नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 64% से अधिक मतदान, सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने कहा, चुनाव के दौरान नीति आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचनाएं साझा करने में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। ओडिशा में चक्रवात की चपेट में आए इलाकों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भुवनेश्वर पहुंचा। विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देशों की मंत्री स्तरीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। श्रीलंका में मस्जिदों और दुकानों पर हमले को देखते हुए कई स्थानों पर रात का कर्फ्यू लगाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 64% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। इस चरण में कल 7 राज्यों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक लगभग 82% मतदान हुआ, हरियाणा में 70%, मध्य प्रदेश में 65% और झारखंड में 64%, दिल्ली में 60%, बिहार में 59% और उत्तर प्रदेश में लगभग 55% मतदान हुआ। निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। श्री सिन्हा ने बताया,
आउट ऑफ 543
कुल 543 संसदीय क्षेत्रों में से अभी तक 483 में मतदान संपन्न हो गया है। इस तरह छठे चरण तक 88.9% संसदीय क्षेत्रों में मतदान पूरा हो चुका है।
लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार में और तेजी आ गई है। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 59 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रतलाम सहित देशभर में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। हमारे चंडीगढ़ संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज पंजाब के बठिंडा में जनसभा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मानसा में एक जनरैली को संबोधित करेंगे। मानसा बठिंडा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। सिमरत कौर बादल जहां से अकाली बीजेपी गठबंधन की उम्मीदवार हैं। कल भी पंजाब में कई बड़े नेताओं ने रैलियां की। मायावती ने शारपुर में रैली की तो अमित शाह ने अमृतसर में विजय संकल्प रैली की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
उत्तर प्रदेश में कई लोगों से इन चुनाव पर अपनी आकांक्षाओं के बारे में आकाशवाणी से बातचीत की।
मैं देवेंद्रनाथ पांडे बलिया लोकसभा से हूँ। मैं इस चुनाव में उस दल को वोट करूंगा जो एक टिकाऊ सरकार दे सके, विकास को गति दे सके, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे, सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य दे सके।
मेरा नाम संदीप पासवान है। मैं कुशीनगर जिले के फाजिल नगर क्षेत्र का रहने वाला हूं। मुझे पहली बार वोट देने का अवसर मिलने जा रहा है, जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित और खुश हूं। मुझे ऐसी सरकार चुननी है जो देश में युवाओं के बारे में सोचे।
प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी एक रैली को संबोधित करेंगे।
राज्य में दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के सोलन जिले में अपनी दूसरी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा द्वारा शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली विजय संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा द्वारा कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल शिमला और मंडी जिले में अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिले और कोलकाता में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में लुधियाना और होशियारपुर में प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार स्थलों के बारे में नीति आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचनाएं साझा करने में चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है। नई दिल्ली में वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत का निपटारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस प्रावधान से छूट मिली हुई है जिसके तहत मंत्रियों के सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार से जोड़ने पर रोक है। निर्वाचन आयोग ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को इस संबंध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों की प्रतियों के साथ 4 मई को पत्र भेजा था। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बेगूसराय जिले में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सांप्रदायिक टिप्पणियों को आपत्तिजनक माना है। आयोग ने कहा है कि गिरिराज सिंह ने चुनाव आचार संहिता और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के आधार पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के मजिस्ट्रेट उमाशंकर एस को पद से हटा दिया है। आयोग ने इस पद पर मुक्ता आर्या की नियुक्ति करते हुए उन्हें आज सवेरे तक प्रभार संभालने का निर्देश दिया है। विश्व की 20 चुनाव प्रबंधन इकाइयों के प्रतिनिधि और प्रमुख भारत की लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, केन्या, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको और रूस जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य हमेशा पिछले अनुभवों से सीखना रहा है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सुधार किए जा सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा में चक्रवात फोनी से प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लेने के लिए 9 सदस्यों का केंद्रीय दल कल रात भुवनेश्वर पहुंचा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर मंत्रालय दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय में अपर सचिव विवेक भारद्वाज कर रहे हैं।
3 दिन के दौरे की शुरुआत से पहले दल के सदस्य विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी से आज मुलाकात करेंगे। दल आज और कल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित पुरी और खोरदा जिले का दौरा करेगा। बुधवार को उनका राज्य के अन्य अधिकारियों से बैठक का कार्यक्रम है। एक अन्य केंद्रीय दल ऊर्जा सचिव के नेतृत्व में आज से बिजली से संबंधित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेगा। दोनों टीमें चक्रवात से हुए नुकसान के बारे में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगी। संबलपुर से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
असम में हिंसाग्रस्त हैलाकांडी जिले में कर्फ्यू अगले 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कल सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया है। हैलाकांडी में शुक्रवार को 2 गुटों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देशों की मंत्री स्तरीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन की बैठक में मंत्रियों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा।
16 विकासशील देश और 6 अल्पविकसित देश इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इसमें चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की, कजाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। यह बैठक इन देशों को एक साथ लाने का प्रयास है ताकि वे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें जो WTO को प्रभावित कर रही हैं। हाल के दिनों में सदस्यों द्वारा एक तरफा कदम उठाने और अन्य देशों की जवाबी कार्रवाई जैसे गतिरोध देखने को मिले हैं। वार्ता प्रक्रिया के दौरान गतिरोध से विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व व्यापार संगठन में सुधार की मांग उठ रही है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
श्रीलंका में मस्जिदों और समुदाय विशेष के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा तनाव के बाद कई इलाकों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के इरादे से इकट्ठा भीड़ को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया। इससे पहले चिलाव इलाके में तनाव के कारण कर्फ्यू लगाया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस तरह हमलों के बाद से ही देश के कई भागों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध तनाव बना हुआ है। हिंसा की ताजा घटनाएं कोलंबो से लगभग 80 किलोमीटर दूर के कुछ क्षेत्रों में हुई, जब अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और दुकानों को निशाना बनाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ सोशल मीडिया साइट पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। बहरहाल आने वाले कुछ हफ्ते सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
मुंबई इंडियंस चौथी बार आईपीएल चैंपियन बन गया है। कल रात हैदराबाद में खेले गए रोमांचक फाइनल में मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स पर एक रन से जीत दर्ज की। तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर के आउट हो जाने से मुंबई ने यह मैच जीत लिया। 150 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 148 रन ही बना सके। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल विकेटकीपर हो गए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है थैलेसीमिया से बचाव और इसके प्रति जागरूकता। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद विमलेंदु। लोकसभा के छठे चरण का मतदान अखबारों की बड़ी खबर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है छठी बाजी में 64% मतदान। राजस्थान पत्रिका का कहना है बंगाल में और बड़ी हिंसा, अंतिम 3 चरणों से वोटिंग ज्यादा, बिहार में मतदान कर्मी की गोली चलने से मौत। 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता का शीर्षक है मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के तरीके का सहारा, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो गांवों में साड़ी गहनों पर जोर, अब तक 3,400 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त। अमर उजाला की विशेष खबर है कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस गठबंधन में फिर विवाद।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 64% से अधिक मतदान। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हुआ। निर्वाचन आयोग ने कहा चुनाव के दौरान नीति आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचनाएं साझा करने में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। ओडिशा में चक्रवात की चपेट में आए इलाकों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भुवनेश्वर पहुंचा। विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देशों की मंत्री स्तरीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। श्रीलंका में मस्जिदों और दुकानों पर हमलों को देखते हुए कई स्थानों पर रात का कर्फ्यू लगाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।